आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे कानपुर के पास पटरी से उतरे, सभी यात्री सुरक्षित। हादसे के कारण 7 ट्रेनें निरस्त, कई ट्रेनों का बदला रूट। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल से प्रदेशभर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित नई चयन सूची 3 महीने के भीतर जारी करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अम्बेडकर नगर में रोजगार मेले में 2500 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, 5100 से अधिक छात्र छात्राओं को बांटे टैबलेट और मुख्यमंत्री ने गाजीपुर में ओलंपिक मेडल विजेता हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल और ललित उपाध्याय को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश सरकार दोनों खिलाड़ियों को देगी 1-1 करोड़ रूपये पुरस्कार राशि। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। वाराणसी जंक्शन से चलकर अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस बीती रात कानपुर से गुजरते हुए भीमसेन स्टेशन से पहले पटरी से डिरेल हो गई। इस यात्री ट्रेन के लगभग 22 डिब्बे पटरी से उतरे, लेकिन किसी प्रकार की जानमाल की क्षति नहीं हुई। घटना के कारण कानपुर झांसी रेल रूट पूरी तरह से प्रभावित हो गया। मौके पर पहुंचे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक उपेन्द्र चंद्र जोशी ने कहा कि ट्रेन के ड्राइवर ने किसी भारी चीज से टकराने की बात कही है, जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। रेलवे प्रशासन की ओर से कानपुर के लिए 05-1-2-2-3-2-3-0-1-8 और 05-1-2-2-3-2-3-0-1-5 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कानपुर कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी, स्थानीय पुलिस बल और रिस्पांस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया। यात्रियों को अन्य रेलगाड़ी से गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे की जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हादसे की वजह से झांसी कानपुर रूट पर चलने वाली 7 गाड़ियां निरस्त कर दी गई, जबकि लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट डायवर्ट कर दिया गया। झांसी से कानपुर और लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी पैसेंजर और एक और ट्रेन के कैंसिल होने से लोगों को बसों और अन्य वाहनों का सहारा लेना पड़ा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि साबरमती एक्सप्रेस का इंजन ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकराकर पटरी से उतर गया। चोट के निशान मिले हैं, साक्ष्य सुरक्षित रखे गए हैं। आईबी और प्रदेश पुलिस जांच कर रही है। कोलकाता में आरजीकर राजकीय अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने आज 24 घंटे के देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। आईएमए ने सुबह 6 बजे से ओपीडी और अन्य सामान्य सेवाएं बंद करने की अपील की है। संगठन ने इस मामले में न्याय और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की मांग की है। संगठन की अपील को देखते हुए इस हड़ताल में निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हो रहे हैं। हड़ताल के कारण प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हैं। बाराबंकी में सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर नगर क्षेत्र में जुलूस निकाला। हापुड़ में चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और महिला चिकित्सक के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। हापुड़ के पिलखुवा में रामा मेडिकल कॉलेज और जीएस मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने भी रोष जताते हुए प्रदर्शन किया। अमरोहा में डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार कर चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। लखनऊ, कानपुर, मुजफ्फरनगर समेत अन्य जनपदों में हड़ताल का असर साफ दिखा। हड़ताल के कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि डॉक्टरों के साथ हिंसा के मामले में 6 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराई जानी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख की होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित नई चयन सूची 3 महीने के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी 6,800 उम्मीदवारों की चयन सूची को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और ब्रजराज सिंह की पीठ ने 90 विशेष याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि नई चयन सूची बनाते समय अगर वर्तमान में कार्यरत किसी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो मौजूदा शिक्षा सत्र को पूरा करने की अनुमति दी जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। पीठ ने यह भी कहा है कि आरक्षित श्रेणी के जो उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में रखे जा सकते हैं उन्हें रखा जाना चाहिए। 69,000 अभ्यर्थियों की चयन सूची जून 2020 को जारी हुई थी, जबकि 6800 अभ्यर्थियों की सूची 5 जनवरी 2022 को जारी हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सपरिवार बुलंदशहर के खुर्जा की पॉटरी नगरी का दौरा करने पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति ने सबसे पहले मुंडाखेड़ा मार्ग स्थित आर्मेनो सिरेमिक पॉटरी का दौरा किया। यहां उन्होंने सिरेमिक उत्पादों की प्रक्रिया और गुणवत्ता का बारीकी से अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए लोगों से पौधारोपण की अपील की। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अम्बेडकर नगर में वृहद रोजगार और ऋण मेला में 2500 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही विभिन्न योजनाओं में चयनित पात्रों को 211 करोड़ रुपए का ऋण और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 5100 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनपद के नौजवानों के लिए स्टेडियम की घोषणा की और कहा कि यहां बनने वाले स्टेडियम से खिलाड़ी निकलेंगे और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के लिए जमीन चिन्हित हो गई है। हमारा युवा भारत का भविष्य है, उसके स्वावलंबन के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 60,000 नौजवानों को भर्ती करने के लिए परीक्षा होने जा रही है, इसमें भी 20% लड़कियों को भर्ती करेंगे।
पहले 23, 24 और 25 में, 30 और 31 में उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे भर्ती करने के लिए परीक्षा होने जा रही है। और इसमें भी याद रखना 30% बेटियों को भर्ती करेंगे, जिससे सड़कों पर सोहदों को ठीक उपचार कर सके। और दूसरा, पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव के भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश के हर जनपद का नौजवान उसमें भर्ती होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गाजीपुर के मेघबारन सिंह हॉकी अकादमी पहुंचकर ओलंपिक में पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाले गाजीपुर के हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल और बनारस के ललित उपाध्याय को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है, जिसके कारण आज प्रदेश से अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही लखनऊ में ओलंपिक में शामिल हुए खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह रखा जाएगा। इसमें मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रूपये की धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी।
इन दोनों खिलाड़ियों ने जो ओलंपिक में पदक जीता है, दोनों खिलाड़ियों को हम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए की राशि तत्काल प्रदान करने की व्यवस्था लखनऊ में आयोजित होने वाले समारोह में करने जा रहे हैं। हम अन्य खिलाड़ियों का भी सम्मान करेंगे, जो भी उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी प्रतिभा किया है ओलंपिक में, उत्तर प्रदेश का वासी है तो उसे 10-10 लाख रुपए हम लोग अपनी तरफ से प्रतिभा करने का उपलब्ध करवाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ पात्र लोगों को योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, इसके साथ ही बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री सुबह कुमारगंज के आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही परिसर में लग रहे वृहद रोजगार मेले का भी उद्घाटन करेंगे और मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने आज आगरा किले के सामने से गरुण उड़ान यात्रा को राजगढ़ के लिए रवाना किया। समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवराय प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित 1253 किलोमीटर लंबी यात्रा में 1000 धावक, 100 साइकिल सवार और 4 घुड़सवार शामिल हैं, जो 13 दिन बाद राजगढ़ पहुंचेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि आगरा से शिवाजी महाराज की वीरता और कुशलता का इतिहास जुड़ा हुआ है। 17 अगस्त 1666 में शिवाजी महाराज जिस रास्ते से आगरा से गए थे, उसी रास्ते से आज ये दल भी रवाना हो रहा है, जिसमें छत्रपति शिवाजी के सेनापति के 14वें वंशज भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। पद्म पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन अगले महीने की 15 तारीख तक किए जा सकते हैं। इच्छुक प्रतिभागी राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे कानपुर के पास पटरी से उतरे, सभी यात्री सुरक्षित। हादसे के कारण 7 ट्रेनें निरस्त, कई ट्रेनों का बदला रूट। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल से प्रदेशभर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित नई चयन सूची 3 महीने के भीतर जारी करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अम्बेडकर नगर में रोजगार मेले में 2500 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, 5100 से अधिक छात्र छात्राओं को बांटे टैबलेट और मुख्यमंत्री ने गाजीपुर में ओलंपिक मेडल विजेता हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल और ललित उपाध्याय को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश सरकार दोनों खिलाड़ियों को देगी 1-1 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि। आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।